अखिल उदय, उदय माने महिमा, भगवान की जो बड़ाई है, बड़प्पन है उनका, करुणा के विषय में, सौंदर्य के विषय में, ऐश्वर्य के विषय में, और जस वैराग सब कुछ, जीवों के प्रति सहज हितैषिता, इन सब गुणों को महारानी कुंती ने व्यक्त किया। तो सुध गोस्वामी तो यह तक कहते हैं कि कृष्ण की अखिल महिमा का वर्णन किया। खिल का अर्थ होता है अधूरा और अखिल का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण महिमा कहा। तो कुंती महारानी के मुख से विविध विचारों को सुन करके श्री कृष्ण मंद मंद हंसने लगे। भगवान समझ रहे थे कि एक तरफ तो ये कहती हैं कि आप रुक जाइए, मत जाइए, हम सब कैसे जिएंगे आपके बिना, हम मर जाएंगे, आपका दर्शन नहीं होगा तो, और फिर कहती हैं कि हमारा स्नेह हटा दीजिए इस भूमि से और परिवार से, नैहर के लोगों से और ससुराल के लोगों से स्नेह पास काट दीजिए, और फिर कहती हैं कि हमारा प्रेम आप में होना चाहिए, और फिर अर्जुन के मित्रता की प्रशंसा कर रही हैं, फिर अर्जुन का मित्र कह रही हैं, वृषि वंशियों का ऋषभ श्रेष्ठ कह रही हैं। तो इस प्रकार से कुंती के हृदय का आंदोलन भगवान पढ़ रहे थे, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तो इस पर भगवान को हंसी आने लगी, और अपनी बुआ की तरफ देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मोहयन युवा, मोहित करते हुए से, हासो जनुन माद करी च माया, भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो अपना हंसता हुआ मुख उसे दिखाते हैं, यह बहुत बड़ा दान है भगवान का। दो दान भगवान का सबसे बढ़ करके है, एक तो आलिंगन देना और दूसरा मुस्कुरा करके बड़े स्नेह से देखना। वो देखने लगे और उन्होंने कहा वाढम, हंसते हुए कहा वाढम, वाढम मैंने कहा ठीक है बुआ जी, वही अनन्य विषया, मैंने मांगा कि मेरी मति अनन्य विषया होकर आप में लगे, आपका प्रेम बढ़ता जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा साहब ठीक है बुआ जी, ऐसा ही होगा, आपका प्रेम मुझ में बढ़ेगा। यह कह करके फिर भी भगवान उतर गए रथ। ऐसा नहीं कुंती जी ने कह दिया कि हमारा स्नेह बंधन काट दीजिए तो भगवान अब कठोर होकर काट ही देंगे और कहा ठीक है मुझसे प्रेम करो और किसी से नहीं, और किसी से नहीं और मैं चलता। भगवान इतने कठोर नहीं है, वे उतर गए रथ से। यद्यपि कुंती ने अंत में उतरने के लिए कहा नहीं, लेकिन भगवान हंसते हुए रथ से उतरे कि बुआ जी ठीक है, आपने जो अंतिम वर मांगा है मुझसे वो ठीक है, आपका प्रेम मुझ में बढ़ता रहे, वो तो है ही और वह निःसीम है, अब क्या बढ़ेगा, लेकिन ठीक है आप जो मांग रही हैं वो होगा। इतना कह करके रथ से उतरे और प्रवेश गज सावयम हस्तिनापुर में प्रवेश किए। रहे कुछ दिन, कुछ दिन रहने के बाद भगवान ने पुनः कुंती महारानी से छुट्टी मांगा, सुभद्रा जी से छुट्टी मांगा, द्रौपदी से और सत्यवती आदि थी। तो स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, जब भगवान ने अपने माँ की बात कहा कि मेरी माँ बहुत दुखी होगी, मेरी माँ देवकी दुखी होगी और आपकी पुत्र वधुएं दुखी होंगी, बच्चे दुखी होंगे, सभी हमसे प्रेम करते हैं, मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर शीघ्र आ जाऊंगा, जैसे आप हमारे बिना नहीं रह सकती हैं वैसे मैं भी नहीं रह सकता हूं, मुझे भी देखने की लालसा होती है, लेकिन क्या करें अब जिम्मेवारी है, जाना है, उत्तरदायित्व है, छुट्टी दीजिए। तो स्त्रियों के सामने किसी स्त्री के दुख को कह दीजिए तो तुरंत ढल जाती है, तो सभी स्त्रियों ने छुट्टी दे दिया, ठीक है कृष्ण जाओ जाओ। और जब कृष्ण पुनः चलने के लिए तैयार हुए तो राज्ञा प्रेमणा निवारिता, महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया, पहले युधिष्ठिर विदा कर चुके थे, कुंती ने रोक लिया था, अब स्त्रियों ने विदा कर दिया तो युधिष्ठिर ने रोक लिया। युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे, बार बार ही कह रहे थे भैया और कुछ दिन रहो, तुम्हारे रहने से हमें सुख मिल रहा है, नहीं तो तुम्हारे बिना यहाँ क्या सुख है, कुछ दिन और रह लो कृष्ण, कुछ दिन और रह लो। इस तरह रोक लिया, कैसे रोक लिया, प्रेमरा, प्रेम, प्रेम से रोक लिया। प्रेम का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, यह महाराज युधिष्ठिर का प्रेम राजा के द्वारा प्रेम से रोक लिए गए। चल करके भी परमेश्वर चल जा नहीं पाया, रुक गए। प्रेम का ये बल है महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने रो करके आंसू बहाकर भगवान कृष्ण से कह दिया कि भैया यहीं रहो कुछ दिन रहो कृष्ण, इसके बाद जाना। तो भगवान रुक गए, बिल्कुल रुक गए। और इसके साथ ही साथ भगवान को अपने परम प्रियतम भक्त भीष्म पितामह के पास जाना था, इस तरह चल चल करके रुक रहे थे। अब रुक ही गए, अब जाएंगे भीष्म पितामह के पास। और युधिष्ठिर महाराज का शोक बढ़ने लगा, तो व्यास देव, भौम मुनि आदि ब्राह्मण ऋषि मुनि सब समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, भगवान भी समझा रहे थे, संसार अनित्य है, युद्ध होता है, मरते हैं लोग, काल के अधीन जगत है, चिंता मत कीजिए। लेकिन जितना समझाते थे कृष्ण और ऋषि लोग, उतना ही महाराज का शोक बढ़ता जाता था। जितना समझाते थे उतना और रोते थे। श्री श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे संधि दूत बन करके गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, तो ऊपर से समझाते थे और भीतर से उसे समझने नहीं दे रहे थे। ऊपर से प्रेम की बात करते थे संधि के, और दुर्योधन के मन में बैठकर बैर को दृढ़ कर रहे थे, शत्रुता को बढ़ा रहे थे। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज को ऊपर से समझा रहे थे और भीतर से उनके शोक को बढ़ा रहे थे, क्योंकि शोक को बढ़ा करके युधिष्ठिर महाराज को ले जाना था भीष्म पितामह के पास, स्वयं दर्शन देना था भगवान को। तो ये कथा कल से प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण, जय श्री
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासैः नाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बाह्यो मे क्षाहि निर्हतः बाल द्विज सुहृन्मित्र पितृ भ्रातृर्गुरुद्रुहः नमेष्यान्निरयान् मोक्ष यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः
धर्म युद्धे बधो दुषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वशः स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो योषा विहत्थितः कर्म भीर्गृह मे धियैः नाहं कल्पो व्यपोहितो यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवेकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति इति भीतः प्रजा द्रोहात् सर्वधर्मविभित्सया ततो विनशनम् प्रागात् यत्र देवव्रतोपत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितम् भूमौ दिवाश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्राशान् द्रष्टुम् भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठा इन्द्रप्रमदः त्रितो घृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोत्थ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः साध्यैः व्यास आदि ईश्वरे हाज्ञैः जो ईश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे उनके द्वारा कृष्णेना और कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा जिनके अद्भुत कर्म हैं उनके द्वारा प्रबोधितः अपि प्रबोध दिए जाने पर भी इतिहास ही इतिहास कह कह कर ना नहीं अबुद्ध्यता समझ पाए शांत हो पाए सुचारपिता शोकमग्न। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ युद्ध प्रारंभ होने से पहले। दोनों सेनाओं में अपने संबंधियों को जब अर्जुन ने देखा तो उन्हें मोह हो गया और वे शोक में डूब गए। मैं इन बंधुओं का वध नहीं करना चाहता, तो भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, तब वे युद्ध किए, उनका मोह निवृत्त हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनं तो। और युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर को शोक हो गया। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को हुआ और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ा शोक हुआ, अर्जुन से बहुत अधिक। अर्जुन का तो शोक था कि आगे वे लोग मर जाएंगे, अभी मरे हुए देखे नहीं थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो सब देख लिए और इसलिए इन्हें बड़ा मोह हुआ। मोह का अर्थ है अज्ञान, हृदय में बहुत बड़ा अज्ञान छा गया कि मैंने वध कराया, मैं करता हूं, मैं नरक में डूबूंगा, मैं सबको सताया, यह किया वह किया। लेकिन वास्तव में यह जो विशाल युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। तो व्यास आदि मुनि जन महाराज युधिष्ठिर को शांत कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। व्यासाद्यै, व्यास जिनमें प्रधान हैं, आदि हैं, ऐसे मुनियों द्वारा इतिहासै प्रबोधित है अपि, विविध इतिहास कह कह करके वे लोग प्रबोध दे रहे थे महाराज युधिष्ठिर को, लेकिन न अबुद्ध्यता, वे नहीं समझे। जितना जितना वे लोग शांत करते थे, समझाते थे, उतना ही वे रोते थे। जिसके लिए युद्ध लड़ा गया कि ये राजा बनेंगे, प्रजा का शासन करेंगे, वो राजा रोने लगा जीतने के बाद, शोक में डूब गए। अब क्या किया गया, तो ऋषियों का कर्तव्य था, वे लोग समझाने लगे महाराज को। भगवान वेदव्यास देव उन ऋषियों में प्रधान थे, इसके साथ ही साथ बहुत से ऋषि धौम्य, कृपाचार्य और बड़े बड़े लोग समझाने लगे कि महाराज ऐसा होता है, धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में इस तरह से वध होता ही है, आप पर कोई पाप नहीं है, आप शासन कीजिए, आप राज्य भोगिए, राजा बनिए। लेकिन मैं नहीं राजा बनूंगा, साफ है नकार दिए। तो यह प्रश्न उठता है कि जब महाराज युधिष्ठिर नहीं समझ रहे थे उनकी बात, फिर भी ये लोग क्यों निरंतर समझा रहे थे। तो इसका उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, ईश्वरे हाग्यै, ईश्वरस्य का इहा इति अज्ञेय, ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की क्या इच्छा है इसको वे लोग नहीं जानते थे। ईश्वर की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज न समझें, वे समझ जाते तो फिर भीष्म पितामह के पास जाने का संजोग नहीं बनता। ईश्वर की इहा इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि भीष्म पितामह के पास जाना है हमें, और युधिष्ठिर महाराज का बहाना करके कि राजा नहीं समझ रहे हैं, इनको शिक्षा देने के लिए परम अनुभवी भीष्म पितामह के पास ले जाना है। भगवान की इच्छा थी युधिष्ठिर को प्रबोधित करना और अपने भक्त को दर्शन देना, और भगवान की अभी इच्छा थी कि भीष्म पितामह प्रवचन करें जिससे विश्व के सभी ज्ञानी लोग आकर के उसे सुने। उनका बहुत बड़ा अनुभव था भीष्म पितामह का, द्वादश महाभागवतों में वे एक भागवत पुरुष हैं। तो इस तरह ये भगवान की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर मतलब कृष्ण। लेकिन उनकी इच्छा को व्यास आदि मुनि लोग नहीं जानते थे, ये समझा रहे। अथवा ईश्वर इहा ज्ञेय, भगवान की इच्छा को ये लोग जानते थे। महाराज युधिष्ठिर नहीं भी समझ रहे थे तो भगवान की इच्छा समझकर फिर भी ये समझा रहे थे, जानते थे कि ये नहीं समझेंगे। कितना भी इतिहास सुनाएंगे, पहले ऐसे राजा हुए, इतना युद्ध हुआ, उसमें इतने लोग मारे गए, वे इस तरह शोक में डूबे थे, इतिहास पहला बता बता कर शोक दूर किया जाता है। जैसे वर्तमान में कोई आदमी मर जाता है तो उसके स्वजन लोग या कोई आकर के समझाते हैं, ये केवल आपके साथ ही ऐसी घटना नहीं है, जो आएगा सो जाएगा, कितने कितने लोग आए और चले गए, मरना निश्चित है, अनिवार्य। इतनी बड़ी बड़े युद्ध, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, उसमें ये मारे गए, वो मारे गए, वो मारे गए, तो आपने जो कुछ किया है तो कालक्रम से आया, कोई नई बात नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये प्रहलाद महाराज, कार्तवीर, अर्जुन कोई भी आते थे, प्रश्न करते थे और सोई से उत्तर देते, लेकिन श्रोता सो करके सुने ये कहीं विधान नहीं। वक्ता भले सोकर कथा कह सकता है सुनिए, आज सबसे बड़ी संख्या होगी प्रवचन में भीष्म पितामह के, पूरे ब्रह्मांड से यहां लिखा गया, तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे, तत्र देवर्षय सर्वे, राजर्षयश्च सर्वे आसन, सभी आए, सर्वे शब्द लगाया गया, कोई बाकी नहीं रहा। भीष्म पितामह का प्रवचन इतना सुंदर है कि उसे सुनने के लिए विश्व के सभी लोग आए, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सब आए। सभी लोग आए इसलिए नहीं कि अब ये लोग नहीं सुने थे, थोड़ा सुन लें, सबसे ज्यादा वही लोग जानते हैं, फिर भी सुनने आए। जिन लोगों का नाम यहाँ आ रहा है, पर्वतो नारदो धम्यो भगवान बादरायण, भगवान वेद व्यास देव और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी भी आए, ब्रह्मरात कहते हैं, और सब लोग शिष्यों के साथ आए, शिष्य रूपेता आ जगमो। आजकल के मुनि लोग स्वयं भी नहीं आते हैं और कोई शिष्य आए तो मना कर देते हैं। अगर भीष्म दास है, भीष्म पितामह की परंपरा में कोई आदमी प्रवचन करे तो ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को भी मना कर देते, फोन करके मना कर देते हैं, नहीं जाना। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि अब हो गए कलयुग में। देखिए कितना सुंदर दृश्य हुआ है, कितना आवश्यक है सुनना कि पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर आए कि अरे चलो चलो चलो, वहां भीष्म पितामह का अनुभव सुनना है भगवान कृष्ण के विषय में। सब लोग शिष्य रूपेता सब जगह लगेगा, सशिष्यो रेणुका सुता, ये एक वचन है तो सशिष्यो है, और बहुवचन में शिष्य ही उपेता, यह सबके साथ लगेगा। सशिष्यो अब रेणुका सुतः के साथ, भरद्वाज के साथ, बृहदस्व के साथ, पर्वत नारद सबके साथ लगेगा, अपने समस्त शिष्यों के साथ आए। भगवान परशुराम आए थे जो भीष्म पितामह के गुरु थे, धनुर्वेद के, धनुष विद्या सिखाए थे गुरु थे, वो भी आए थे उनका प्रवचन सुनने। तो भगवान की यह इच्छा थी कि मैं भीष्म पितामह के पास चलूं, महाराज युधिष्ठिर चलेंगे, महाराज युधिष्ठिर को वे उपदेश करेंगे और फिर मेरे विषय में बोलेंगे तो उसको सारा विश्व सुनेगा, यही उनकी इच्छा थी। तो श्रीधर स्वामी तो लिखते हैं कि व्यास आदि मुनिजन भगवान की इच्छा को नहीं जान रहे थे, इसीलिए वे समझाते जा रहे थे, अथवा जानते थे इसीलिए समझाते थे, या जान करके भी कि ये नहीं समझेंगे फिर भी समझा रहे थे, क्योंकि कृष्ण भी समझा रहे थे। इतिहास कह कह कर, प्राचीन इतिहास कह देने पर आदमी को तत्काल सांत्वना मिल जाती है, इतिहास ही प्रबोधित है अति न अबुद्यत, नहीं समझ। तो कृष्ण के लिए अद्भुत कर्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यह है कि अपने भक्त भीष्म के निर्याण महोत्सव में राजा के साथ वे भाग लेना चाहते थे, कुरुक्षेत्र जाना चाहते थे, और भीष्म पितामह के मुख से ही महाराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करना चाहते थे। तो अद्भुत कर्मा का अर्थ है कि जैसे कुरु पांडव में संधि कराने गए थे और जो बोलना चाहिए उचित ढंग से वही बोल भी रहे थे, संधि की ही बात कर रहे थे भगवान, जब संधि दूत बनकर गए थे कोई कलह की बात नहीं कर रहे थे। उनका प्रवचन महाभारत में लिखा गया है, जो उचित बात है झगड़ा निपटाने के लिए वही बोल रहे थे, लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी भीतर से दुर्योधन के हृदय में वैर दृढ़ कर रहे थे। इसी तरह से यहां युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण समझा रहे थे, लेकिन उनके शोक को ही बढ़ा रहे थे भीतर से, परमात्मा रूप से ऊपर से समझा रहे, शोक निवारण करने वाले शब्दों को बोल रहे थे पर शोक बढ़ता जा रहा था। जैसे कहीं आग लगी हो और पानी डाला जाए और पानी से और आग बढ़ने लगे, ये हालत हो गई। इसलिए कृष्ण को यहां अद्भुत कर्मा कहा गया, उनके विचित्र कर्म है, ऊपर से बोलेंगे क्या और भीतर से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शोक दूर करने वाले श्लोक सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और शोक बढ़ाते जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजभवन में बैठते थे तो सिंहासन पर नहीं बैठते थे, हम राजा नहीं बनेंगे, हम वन में जाएंगे, हम बहुत पाप किए हैं, ये किए हैं वो, तो बारी बारी से कभी भगवान वेदव्यास देव क्लास देते थे, इसके बाद भगवान समझाने लगते थे या बीच बीच में रुक करके थोड़ा वो बोलते थे, थोड़ा वो बोलते थे, महाराज को समझाते थे, लेकिन न अबुद्धि बल्कि सुचार पिता और शोक में डूबते जा रहे थे, शोक में डूबते जा रहे। शोकम प्रपंचयति, क्या शोक होने लगा उनको। तो आह राजा धर्म सुतः चिंतन सुहृदाम बधम, जितना ये लोग प्रवचन करते थे समझाते थे उतना ही महाराज युधिष्ठिर अपने मरे हुए स्वजनों का स्मरण कर रहे। चिंतन सुहृदाम बधम, सुहृदों के मित्रों के संबंधियों के बध का ही चिंतन कर रहे समझाने के बाद। क्यों ऐसा कर रहे थे, स्नेह मोह वशम गता गता, स्नेह और मोह के वश में थे। स्नेह का अर्थ प्रेम और मोह का अर्थ अज्ञान, स्नेह जनित मोह के वश में थे। अथवा श्रीपद वल्लभाचार्य लिखे हैं कि मरे हुओं के लिए स्नेह और जीवित के लिए मोह में पड़े थे, ये अर्थ करते हैं। जो मर गए थे उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा था और जो जीवित थे उनके प्रति मोह, कि ये मेरे हैं, ये है, वो है, ऐसे हैं, ऐसे ये उत्पन्न हो रहा, तो स्नेह मोह वशंगत। यह कैसे हो रहा था, प्राकृतेन आत्मना, प्राकृत मन से। प्राकृत का अर्थ होता है प्रकृति में आसक्त मन, संसार के दृश्य में आसक्त मन। वैसे महाराज युधिष्ठिर भगवान के पार्षद हैं, उनका मन दिव्य है, अप्राकृत है, उसमें शरीर के संबंध के कारण शोक मोह आ ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अद्भुत कर्मणा भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया, तो अद्भुत कर्मा भगवान अपने पार्षद में भी इस तरह का अज्ञान थोड़े काल के लिए भर सकते हैं। जैसे अर्जुन का मन, अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, उनका मन दिव्य है, उसमें संसारिक शोक मोह भय नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी स्वजनों को देख करके आ गया, क्योंकि भगवान हृदय में है, वे कभी कभी भक्तों को के मन में, अपने पार्षदों के मन में इस तरह का अज्ञान भर देते हैं जगत का हित करने के लिए। यदि महाराज युधिष्ठिर के मन में इस प्रकार का अज्ञान नहीं होता तो महाभारत शांति पर्व का जन्म नहीं होता। भीष्म पितामह का ज्ञान था वो प्रकट नहीं होता, अपने ज्ञान को लिए हुए ही वे चले गए होते। महाराज युधिष्ठिर का अज्ञान मोह कारण बन गया भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन कराने के लिए। तो यहां प्राकृतेन आत्मना संसारिक मन से शब्द का अर्थ बहुत सावधानी से लेना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर का मन कभी प्राकृत हो ही नहीं सकता। फिर भी यह कहने का आशय यह है कि जैसे प्राकृतेन आत्मा, जैसे संसारिक लोगों की मति अपने पुत्र परिवार धन घर आदि में लगी रहती है, भगवान को पकड़ ही नहीं पाती है। लगता था जैसे महाराज युधिष्ठिर का मन भी केवल संसार का ही चिंतन कर रहा है, श्री कृष्ण को भूल से गए। इसीलिए शुद्ध गोस्वामी यहां प्राकृतेन आत्मना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृत आत्मा। लगता था जैसे महाराज युधिष्ठिर का मन भी केवल संसार का ही चिंतन कर रहा है, श्री कृष्ण को भूल से गए। इसीलिए शुद्ध गोस्वामी यहां प्राकृतेन आत्मना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृत आत्मा। प्राकृत आत्मा का अर्थ है प्रकृति से प्रेम करने वाला मन, यह प्रकृति है, बहिरंगा प्रकृति। यहां अनेक व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, अनेक लोग उत्पन्न हुए हैं, अनेक वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं को जो मन पसंद करता है इसमें रचा रहता है, रचा पचा रहता है, भगवान को बिल्कुल नहीं जानता, उसको प्राकृत कहता है। प्रकृति के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति प्राकृत, प्राकृतेन आत्मना। भगवत पार्षदों का मन ऐसा होता है कि वो क्षण भर के लिए कृष्ण को नहीं भूलता है और संसार की वस्तुओं में उसका मन नहीं रमता, उनका मन अप्राकृत होता है। परंतु ऐसा लग रहा था महाराज युधिष्ठिर रो रहे थे जैसे संसारिक जीव बिल्कुल माया में, ये मेरा है वो मेरा है, मैं ये कराया वो कराया वो कराया, इस तरह से रो रहे थे। जितना समझाया जा रहा था उतना ही शोक बढ़ रहा था, ये आश्चर्य की बात है। और समझाने वाले फिर भी थक नहीं रहे थे, समझाने वाले नहीं थक रहे थे। अंत में समझाते समझाते भगवान ने कहा कि अच्छा एक उपाय है इनका शोक दूर करने का, सबसे बड़े ज्ञानी सबसे बड़े भक्त भीष्म पितामह अभी जीवित हैं, तो उनके पास ले चलना चाहिए। प्रेम का स्वभाव होता है कि वो छिपाना चाहता है अपने को, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो भीष्म पितामह के प्रति प्रेम है उसको भी प्रकट नहीं कर रहे थे। जाना तो चाहते थे भीष्म के पास, लेकिन कोई बहाना करके। तो उन्होंने कहा कि अगर भीष्म पितामह के पास इनको ले चलना चाहिए तो हमें विश्वास है कि उनके समझाने से इनका शोक दूर हो जाएगा। तो सभी ऋषियों ने कहा हाँ ठीक है, ये ठीक है, ले चलना चाहिए। महाराज से पूछा गया कि महाराज जब आप हमारे समझाने से शांत नहीं हो रहे हैं तो आप अपने पितामह से पूछिए, आप जानते हैं कि वे सबसे बड़े ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, आपको विश्वास है ना? तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, तो चलिए उनसे पूछिए और दर्शन भी हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ चलो, जाना तो था कृष्ण को लेकिन किसी तरह से बहाना चाहिए, ब्याज चाहिए। तो जब भगवान समझा रहे थे और ऋषि लोग समझा रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर का शोक बढ़ रहा था, उससे बढ़े हुए शोक की दशा में क्या क्या बोलते थे कुछ श्लोक में वो भाव दिए गए हैं उनके विलाप के। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः
पारक्यस्यैव देहस्य बहवो मे औक्षहिणीर्हतः।
अहो आश्चर्य है, कितना मेरे मन में अज्ञान है। मे हृदय रूढ़म अज्ञानम पश्यत। जब उनको ज्ञान दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था, तो उल्टे वही बोलने लगते थे, मेरे अज्ञान को देखो, पश्यत, जरा विचार करो मैं कितना अज्ञानी हूं, कितना अज्ञानी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मेरा मन दूषित है, आत्मा मन मन, मेरा मन दूषित है, हृदय दूषित है। तो ऐसे हृदय में धसे हुए मेरे अज्ञान को देखो, क्या मैं इस देह के लिए बहुत औक्षहिणी सेनाओं का वध करा दिया, इस देह के